राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 31 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद पीनासर द्वारा पर हुआ। राम
नारायण 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 राम राम राम। अब बोलो सा अहंकार राक्षस महास बहुदाई सब भांति जो छूटे इस दुष्ट से सोई पावे शांत। खास करके जो मैपन है ये मिटना बड़ा मुश्किल है। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार। तो मैं मेरे की रसी है निर्मो निरहंकार। संतों की वाणी में भी आता है कि मैं मेरी का त्याग त्याग क्या करूं कि मैं और मेरी का त्याग होना चाहिए। निर्मो निरहंकार सर शांति मदी गति निर्मो निरहंकार सुन दुख सुख क्षमे। तो निर्मम और निरहंकार अहंकार ममता इसका त्याग करना है। अहंकार ममता यही है मैं और मोर तो से माया यही बस की ने जीव निकाया। इसमें भी ममता से और सूक्ष्म है अहंता और अहंता भी दृढ़ हो रही है ममता से। ममता पदार्थों के साथ में भी है और अहंता के साथ भी ममता है। ख्याल करें आप अपना अहंकार अपना अहंकार अपना अभिमान तो अहंता में ममता और अहंता दोनों है अहम में। ये खास चीज है अहम ये है बाधक। लोग तो कहते हैं कर्ण निरपेक्ष कैसे होगा। हम कहते कर्ण निरपेक्ष सुगम है तो अहंता निरपेक्ष होना चाहिए। अहंकार विमूढ आत्मा करता अहम इति मन्यते मैं करता हूँ। तो गीता कहते नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्ये तत्त्वे तत्त्वेत्ता को चाहिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। पश्यन श्रृणन श्वसन जिघ्रन आसनन गसन स्वपन श्वसन प्रलपन विसन ग्रहण उन्मिशन निमिशन तेरा क्रिया बताई। ये क्रिया करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता हूँ तो ये मैं करता हूँ मिटने से वास्तव तत्व की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग से कर्म योग से भक्ति योग से तीनों से कर्म योग से अहंकार शुद्ध होता है और कर्म ज्ञान योग से अहंता मिटती है और भक्ति योग से अहंता बदलती है। अहंता बदलने पर भी मिट जाती है शुद्ध होने पर भी मिट जाती है मिटने पर भी मिट जाती है। ये अहंता का विचार है। ज्ञान योग में अहंता है उसी मिटाने के एक उपाय है उसमें एक बाधा लगती है उसे सिर्फ थोड़ा ख्याल करना है। ज्ञान योग में अहम ब्रह्मास्मि इस विचार में मैं ब्रह्म हूँ ये अहम है ये अहम टूटेगा नहीं। इसको दो तरह से उपयोगी माना है ज्ञान मार्ग में दो तरह से उपयोगी माना है। साधन करता हूँ तो श्रवण मनन निध्यासन ध्यान और समाधि मैं कर रहा हूँ। समाधि भी मैं करता हूँ समाधि अपनी अवस्था मानी है अपनी अवस्था विस्थित और समाहित दो तरह की मानी है वित्थान अवस्था और समाधि अवस्था। तो इसमें भी अहम रहने से ही होगी अहम रहने बिना ये समाधि नहीं होगी। तो ये उपयोगी है उस अहम का कैसे मिटाया जाए एक बात। दूसरी बात ज्ञान मार्ग में आती है कि जीव ब्रह्म की एकता है, वो एकता अहम के साथ में ब्रह्म होने से ही एकता होगी, और अगर अहंता को नहीं रखेंगे तो एकता कैसे होगी, तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होती। दो तरह से अहंकार का उपयोग है। अब उपयोगी वस्तु कैसे छोड़ी जाएगी, तो अंत में बहुत मुश्किल हो जाएगी, बड़ी कठिन हो जाएगी। तो ये अंत मिटने से निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति, अहंकार रहित होने शांति की प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्ग में गीता ने बताया है, अहंकारम धर्म बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूत ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचित न कांक्षति। ब्रह्म भूत होने पर राग द्वेष मिट जाते हैं, न शोचित न कांक्षति, शोक मिट जाता है। वो मिटने पर समस्त सर्वेषु भूतेषु स्वतः समस्थिति होगी, व्यक्तित्व नहीं रहेगा। अहंता ममता मिटने के बाद फिर सूक्ष्म अहंता रहती है, व्यक्तित्व रहता है। तो वो मिटने समस्त सर्वेषु भूतेषु तब मद भक्ति लभते पराम, उसके बाद ही मेरा मेरी परा भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्तिया माओ भी जानती, भक्ति से मेरे को जानते हैं, जो मैं जैसा हूँ वैसा ही। तो भक्ति की प्राप्ति होती है समता के बाद, और समता होती है अहंता ममता के दूर करने से, और उस भक्ति से फिर मैं जैसा हूँ जानने में आता हूँ, और जानने पर मेरी प्राप्ति हो जाती। तो मन तत्व तो अज्ञात विषते तदनंतरम, जानने पर अंतर नहीं रहता, तदनंतर अनंतर ही तत्काल ही तत्व की प्राप्ति हो जाती है, मेरी प्राप्ति होती है। तो गीता ने बहुत विलक्षण बात बताई है। अद्वैत सिद्धांत में आकर भक्ति का खंडन कर देते हैं। वो भक्ति दो तरह की, साधन भक्ति और सिद्ध भक्ति है। सिद्ध भक्ति चीज है वो बहुत विलक्षण है, उसमें अहंकार नहीं रहता है, भगवान ही रह जाते हैं। इस वास्ते गीता ने वासुदेव सर्वमति समहात्मा सुदुर्लभ बताया है। अहम ब्रह्मास्मि, वो मैं ही ब्रह्म हूँ, इसको ऊंचा दर्जा नहीं दिया है। अहम के बाद में तो ये बताई है कि ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, ये ब्रह्म भूत होता है। ब्रह्म भूत पांचवें में ये ब्रह्म भूत अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। तो ब्रह्म भूत अवस्था है, तो ये अवस्था आवश्यक मानते हैं ज्ञान मार्ग में। ये अहंता मिटती नहीं, अहम रूपी अणु बहुत सूक्ष्म है, इसका मिटना बड़ा कठिन हो जाता है। शुद्ध होने से मिट जाता है, भगवान में लीन हो जाए। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, भगवान ही केवल मेरे और मेरा कोई नहीं है, ऐसे होकर उस भगवान में जो तल्लीनता हो जाती है, तो भगवत कृपा से अहंता मिट जाती है। नहीं तो अहंता मिटती नहीं है। मैं भक्त हूँ ये भी रह जाता है, मैं प्रेम हूँ ऐसा रह जाता है, मैं ज्ञानी हूँ ऐसा रह जाता है, मैं योगी हूँ ऐसा रह जाता है। कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग में भी अहंता रहती है बहुत दूर तक। भगवान की शरण हो जाए सर्वथा, तो इससे अहंता मिटती है। तो सर्वगुह्यतम बात भगवान ने भक्ति की बात बताई है। भक्ति की बहुत विशेषता से महिमा गाई है भगवान ने, तो उससे अहंता मिटती है। अहंता सूक्ष्म रहने पर भीतर में भोगेच्छा है, राग है, आसक्ति है, ये भी सूक्ष्म रीति से रहते हैं, उसको पता नहीं लगता है। परंतु संयोग होने से वो उद्बुद्ध हो जाता है, तब पता लगता है। तो वास्तव में अहंकार को मिटाना है, मैंपन ये व्यक्तित्व ये परिच्छिन्नता मिटने से होता है। मैं ज्ञानी हूँ ये अज्ञानी है, ऐसा भाव रहने पर अहंता मिटती नहीं है, सूक्ष्म अहंता दृढ़ होती है। और वो अहंता के विषय में जीवन मुक्ति विवेक में आया है, और जीवन मुक्तों के लिए ऐसी बात बताई है कि सात भूमिका है। सात भूमिका में चतुर्थी भूमिका ज्ञानम है। चतुर्थी भूमिका ज्ञानम तिस्तु साधनम पूरा, पहली दूसरी तीसरी ये साधन है। जीवन मुक्ति रवस्थास्तु परास्तिस्त प्रकृति था। आज तीन जो है पांच छह सात ये जीवन मुक्ति की अवस्था है। वो जीवन मुक्त होता है और जीवन मुक्त का जो भाव है उसमें भी अहंता है। इस वास्ते जीवन मुक्ति विवेक में कहा है कि ये अहंता है, इससे जीवन मुक्ति का भोग होता है। और उसमें दो तरह का संन्यास है, विधि से संन्यास और एक है विद्युत संन्यास। तो विद्युत संन्यास लिया है वहाँ विद्वान जो संन्यास लेना उसमें अहंता रहती है और फिर संन्यास लेने से वो पूरी हो जाती है। जिसमें सातवीं भूमिका जाते हुए चतुर्थी भूमिका तो ज्ञान हुआ, तीन अगर साधन पहले तीन साध्य हुए उसमें ब्रह्म रूप हो जाता है चौथी भूमिका में। और ब्रह्म रूप होने के बाद में वो विद्युत 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 संन्यास होते विद्युत भर विद्युत वरियान और विद्युत वरिष्ठ, ये तीन बात होती है। विद्युत भर विद्युत वरियान विद्युत वरिष्ठ, ये तीन भूमिका है ज्ञान होने के बाद में। विद्युत वरिष्ठ होता है उसमें पूर्णता होती है, ये वेदांत बताइए बात। तो विद्युत वरिष्ठ हुए के से पहले सूक्ष्म अहंकार रहता है, ये बात मालूम होती है वेदांत के ठीक गहरा अध्ययन करने पर भी। वो अहंकार रहता है इस वास्ते पहले से ही ये बात मान लेने से अहंकार के नाश का उद्योग नहीं होता है। तो वो अहंकार मिटना बड़ा कठिन हो जाता है। उद्योग करने पर ख्याल करने पर भी अहंता बाधक है, फिर भी इसका मिटना कठिन होता है। साधन करते हैं उनको इन बातों का ठीक अनुभव है, जो सूक्ष्म वृत्ति से पहुंचते हैं तो अहंता का मिटना बड़ा कठिन होता है। तो ये अहंता सूक्ष्म है बहुत ही, तो उस अहंता से दूर होने पर प्रकृति से संबंध छूटता है। गीता ने इसको स्पष्ट कहा है, साफ कहा है। इतना वेदांत के ग्रंथों में भक्ति के ग्रंथों में आता नहीं है। योग का वर्णन तो है ही नहीं, ज्यादा वर्णन शास्त्रों में बहुत कम है। और जिसमें प्रचलित व्याख्यान विवेचन पढ़ाई आदि में देखा जाए तो कर्मयोग का वर्णन बहुत कम है। अच्छे अच्छे विद्वान भी कर्मयोग की तह तक नहीं पहुँचते है, ऐसा उनके ग्रंथों से विशेष विवेचन से मालूम होता है। तो अहंता बहुत सूक्ष्म है और मिटती नहीं है। कर्मयोग ठीक तरह से अनुष्ठान में आता नहीं है, आने पर इसकी अहंता के साथ में जो पक्ष है वो ढीला पड़ जाता है और मिट जाता है। और मिट जाता है तब जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध जड़ता का संबंध विच्छेद होने पर चिन्मय में जो अहंता रहती वो स्वयं मिट जाएगी स्वाभाविक, परंतु देरी लगेगी। और भक्ति में अर्पण कर देने से, भगवान के अर्पण होने से, भगवान की कृपा से जल्दी मिटती है और विशेषता से मिटती है। तेसा में अनुकंपार्थम अहम अज्ञान तम नाशयामि आत्म भाव सो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उसका नाश कर देता हूँ ज्ञान दीप ज्ञान दीप से, तो वो ज्ञान होता अंत के बाद में। तो ऐसी विलक्षण बात है अहंता की। तो अहंता मिटना है वो वास्तव में ठीक है, चाहे ज्ञान योग से हो चाहे भक्ति योग से हो। अहंता की मिटे बिना पूर्णता नहीं होती। पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अहंता नहीं रहती। एक ब्रह्म स्वरूप होने से वो स्वरूप ही रह जाता है, स्वरूप का जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहता। ज्ञानी नहीं रहता, ज्ञान रहता है। ऐसे भक्ति में भक्त नहीं रहता, भक्ति रहती है। ऐसे योग में योगी नहीं रहता, योग रहता है। ऐसे तीनों रहने तीनों में अहंकार मिटने से असली तत्व की प्राप्ति होती है। तो ये सूक्ष्म रीति से साधकों के लिए बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। अहंता का लेस मात्र भी रहेगा तो वो फिर जन्म मरण का कारण हो जाएगी। उत्तम उत्तम भोगों का भोग हो जाएगा, परंतु तत्व की प्राप्ति नहीं होती। उपनिषदों में भी आता है कि ऐसा तत्व होता है उसका विमान विंतार बड़ा है, ईश्वरी उसका बताया है, सब देख सब उस करता है, तो उस समय सूक्ष्म अहंकार मिटता नहीं है। ऐसा है तो निर्ममो निरहंकार ऐसा शांति होती, कर्म योग से निर्मम निर्मल शांति को प्राप्त होता है, भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार समझ उस समय है, और ज्ञान में पहले बताया अहंकार परम धर्म काम क्रोध परिक्रम निर्मम। तो अहंकार का मिटना बहुत आवश्यक है, और ये साधनों में मैं साधक हूँ ऐसा वो उपयोगी मानते हैं। मैं साधक हूँ तो मैं साधन करता हूँ, इसके बाद में साधन करता न रहे साधन होता है, साधन हो रहा है, भजन करता हूँ नहीं भजन हो रहा है, भगवान की कृपा से चिंतन हो रहा है, तत्व के अनुभव से भी तत्व का अनुभव हो रहा है, मैं तत्व का अनुभव करता हूँ, ये होने पर अहंता मिटती नहीं, स्वतः स्वाभाविक करता है फिर होता है और होने के बाद है। सेठ जी ने विवेचन किया था, मेरे को बहुत विचित्र लगा, सेठ जी कमरे में बैठा था, उस समय सेठ जी ने कहा कि साधु का करना और होना और है, ये तीन भूमिका बताई थी। तो साधन करना है तो बहुत नीचा, साधन होना है बड़ा अच्छा है, और होने से भी है रहेगा ठीक है, करने में कर्तृत्व अभिमान रहता है, प्रकृति का संबंध ज्यादा रहता है, होने में हो रहा है साधन, इसमें प्रकृति का संबंध कम रहता है, और है में नहीं रहता है। जब तक मैं ब्रह्म हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं जीवन मुक्त हूँ, मैं हूँ, तब तक अहंकार सूक्ष्म दृष्टि रहता है, हूँ नहीं रहेगा है रहेगा। तो हूँ है ये बहुत ऐसी बात है कि इदं से इदं कौन थे क्षेत्र में, ये इदंता से क्षेत्र को देगा, एतद यो वेति एतद करके अहंकार को जो जानता है वो स्वरूप है, और वो मेरे मत में ज्ञान है। अपरा और परा प्रकृति बताई भगवान ने, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति इयम, ये भी इदंता से कहा, ये बिना प्रकृति अपरेयम इतस्या बुद्धि प्रकृति बुद्धि में पराम, तो ये अपरा इयम और अहंकार इति इयम बिना प्रकृति इयम अहम, तो यहाँ पर अहंता दो बार आई, अहंकार इति इयम में बिना प्रकृति सदा, ये आठ प्रकार की भेदों वाली प्रकृति भिन्न हुई, आठ भेदों वाली प्रकृति अपरा, अपरा इयम, तो इदम फिर आया कि अपरा इदम ये इयम करके अपरा है, इससे परा प्रकृति है जीव, जीव है वो परा प्रकृति जीव, और वो जीव होता है जो जीव भूता महाबाहो एकदम धारी से जगत, तो यहाँ भी जीव भूता का प्रकृति का स्त्रीलिंग आ गया। पंद्रहवें अध्याय में ममई वारिशो जीव लोगे जीव भूता सनातना, ममई वारिश पुल्लिंग उन्हें जीव भूता बताया, और सातवें में जीव भूता में ये जीव रूप बना हुआ है, तो जीव रूप बना हुआ है तब तक इसके साथ में ये अपरा प्रकृति का संबंध है, और ये अपरा संबंध सर्वथा छूटने के बाद में फिर एक परमात्मा ही रह जाते हैं। तो सातवें अध्याय में मत्ता परतरम नान्य, मेरे सिवाय मेरे से परे कुछ नहीं है, मेरे से इधर इधर है, प्रकृति के संबंध में है, इसी वो सात्विक भाव राजशास्त्र मत्त एव, ये मेरे से ही होते हैं। तो भक्ति में तो भगवान कहते हैं मेरे से सत्तम होते हैं, ज्ञान मार्ग में सप्तम रजस्तम ऐसी गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुण होते हैं, उन गुणों में अहंकार होता है। अहंकार को तीन तरह का बताया है भागवत में, सात्विक राजस और तामस। सात्विक अहंकार है वो अहंकार भी बाधक है, उसे भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती, तत्व की प्राप्ति होने पर वो सात्विक अहंकार भी नहीं रहता, ये भी निवृत्त हो जाता है, क्यों प्रकृति महान तत्व अहंकार, प्रकृति से महत्व होता है, महत्व से अहंकार होता है, तस्मात गण से षोडश का फिर गण ये पैदा होता है, तो इस बात अहंकार सबका मूल है। तो अहंकार से रहित होना बहुत आवश्यक है। वास्तव में तत्वों की प्राप्ति मान देते हैं कि प्राप्ति हुई, वह मान्यता है, उसमें भी अहंकार रहती है, सूक्ष्म रहती है। जीवन मुक्ति विवेक में भी सातवीं पग में जब जा करके वो रहता है तो स्वतः वित्तिष्ठ थे आदि भूमिका में जो आदि मानो पांचवी उसे स्वतः वित्तिष्ठ थे पांचवी भूमिका में आप सब उत्थान होता है और द्वितीय पर बोधित छठी भूमिका में दूसरा जगा देता है तो खाना पीना आदि होता है। अंतिम वित्तिष्ठ थे नहीं वह सातवीं उत्थान नहीं होता, सदा भवन में वैसे कैसा है उत्थान होता ही नहीं। तो ये समाधि की प्रक्रिया से तीन बताई, वास्तव में बात है एक और हिस्सा चौथी, वो समाधि नहीं होती है। समाधि दो तरह की ऐसे परार पर समझो कई भेद समाधि के, उन सब भेदों में दो भेद मुख है, एक भेद के अंतर्गत तीसरी समाधि है और एक समाधि है उसमें भेद नहीं है, वो है सहज समाधि। सहज समाधि का वर्णन सहजावस्था, तो सहजावस्था का वर्णन संतों की वाणी में भी देखा, मैंने पढ़ी है। सुरसागर रहा तो मैंने रामदास महाराज की वाणी पढ़ी सुनी है, रामदास महाराज सुनी है, व्यास जी महाराज की बात सुनी है, तो इनमें बहुत कम आता है। श्री रामदास जी महाराज में इसका वर्णन आता है, विजेता सहज हमारे सहज का सहज किया विश्राम एक नाम बताऊ सहज तन मन कर सहज पूजा सहज साधा, ये सहज का बहुत अच्छा गया है। जयमदास हरिया जयमदास गुरु राम निरंजन देव और काया देव देव और सहज हमारा हमारी सेव, तो ये हमारी सहज सेव है। सहज कबीर जी महाराज की वाणी में सहज का वर्णन है, साधु भाई सहज समाधि भरी, उसमें सहज समाधि वर्णन आया है। तो सहज समाधि में वित्थान नहीं होता, वित्थान जब तक होता है तब तक अहंता साथ में प्रकृति साथ में है, तो उसका वित्थान होता है। प्रकृति साथ में नहीं रहने से ये अहम रूपी अणु न रहने से वित्थान नहीं होता, वो सहज समाधि सहज अवस्था है। उत्तमा सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता तीर्थ यात्रा धमा धमा, तो उत्तम सहज अवस्था है, वो सहज अवस्था स्वतः सिद्ध है, वो सहज है। इस वास्ते कर्म मार्ग को योग मार्ग को भगवान ने सहज बताया है। सहजन कर्म कौन थे संतोष भक्त थे सर्वालंबा ही, वो सहज होता है। कर्मयोग भी सहज होता है और भक्ति योगी भी सहज हो जाती है, पर सहज का वर्णन ज्ञान योग के विशेषता से आया है। तो सहज योग अवस्था में काम नहीं रहता, वो तो स्वाभाविक जैसे ब्रह्म परमात्मा है निर्गुण ब्रह्म माना है तो उसमें अहंता नहीं है, वो सहज स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। वो जो स्थिर एक तत्व है उसमें अपना मैंपन नहीं रहता है, तब तो उसकी प्राप्ति होती है, तब वह सिद्ध अवस्था होती है। सहज अवस्था है स्वाभाविक, उसमें सिद्ध भी नहीं है कि मैं सिद्ध हूँ ऐसा नहीं रहता, मैं ज्ञानी हूँ ये नहीं रहता, ज्ञान रहता है। भक्त हूँ ऐसा नहीं रहता, भक्ति रहती है। मैं योगी हूँ ऐसा नहीं रहता, योग रहता है। तो वो ज्ञान और योग और भक्त भक्त भक्ति ये नहीं रहते, भक्त भक्त रहता है, वो भक्त भी नहीं रहता, भक्ति रहती है, भक्ति होकर के भगवान में लीन हो जाती है, फिर भक्ति नहीं रहती, उसमें फिर विलक्षणता होती है, अलौकिकता होती है। भक्त होने पर उसमें फिर दो भेद होते हैं आपस में, संयोग विपरलम्ब श्रृंगार दो तरह का है। इस जैसे भगवान में भी दो तरह की बात होती है, जैसे भगवान श्री राम वनवास में चले गए तो कौशल्या माता के दो बातें होती है मन में आती है। कौशल्या माता के मन में आता है सुमित्रा से पूछे बहन ये तो कहो और राम लला वनवास में चला गया नहीं, चला गया तो मेरे को दिखता कैसे, मेरे को राम लक्ष्मण सीता दिखते हैं सामने दिखते हैं मेरे को प्रतीत होते हैं, तो चले गए तो मेरे को दिखते कैसे हैं, और दिखते हैं तो फिर मेरे को शांति प्रसन्नता अनुकूल नहीं रहता है, उसमें एक व्याकुलता रहती है। तो देखते तो व्याकुलता कैसे रहती है, तो पता सच्ची बात क्या है, रामलला वनवास में चले गए कि यहाँ है, क्या बात है। तो रामलला के संयोग में वियोग, वियोग में संयोग, संयोग वियोग, वियोग में संयोग, ये दो अवस्था होती है प्रेम की, विलक्षण अवस्था होती है, जो बात है इसमें अहंता नहीं रहती है, ऐसी अवस्था होती है। तो ये अवस्था ब्रह्म स्वरूप सहज अवस्था में ऐसी एक विलक्षणता होती है, वो एक बहुत विचित्र अवस्था होती है, बड़ी मस्ती की अवस्था होती है। इसका वर्णन बहुत कम आता है शास्त्रों में, और भी संकेत वर्णन सब है, हमारे शास्त्रों में नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कम है, बहुत थोड़ी जगह वर्णन है, ज्यादा जगह नहीं है, ऐसी अवस्था है। तो उसमें निर्हंकार होने से होता है ये बात।
महाराज जी, उसमें ये बात है कि जब तक अहंकार भाव रहता है तब तक कर्म सापेक्षता की बात हृदय से निकलती नहीं
है, कर्म में पहले निकल जाती है। कर्म सापेक्ष प्रणाम मानना ही अहंकार को निमंत्रण देना है।
अहंकार से कर्म सापेक्षता दिखती है या कर्म सापेक्ष से अहंकार बना
हुआ? अहंकार से कर्म सापेक्षता दिखती है, और कर्ण निरपेक्ष हो जाने से अहंकार बहुत जल्दी मिट जाता है।
कर्णों का आग्रह अहंकार इसलिए दिखता है,
जो दिखता है। क्रिया है ना, प्रकृति की खास चीज है क्रिया और पदार्थ। इसमें भी देखा जाए तो पदार्थ नहीं है, क्रिया है। दिखने में पदार्थ मुख्य दिखते हैं और तत्व में क्रिया मुख्य होती है, पदार्थ है उसको क्रिया का नाम इस पदार्थ है। जैसे मनुष्य दिखता है तो मनुष्य दिखता है, पर मनुष्य क्या है कि जन्म फिर क्रिया ही क्रिया, क्रिया ही क्रिया, क्रिया होते तो मर जाता है, तो वो क्रिया बंद हो जाती है। तो क्रिया का नाम ही पदार्थ है, पदार्थ कुछ नहीं है, क्रियाओं का समूह का नाम पदार्थ है। पदार्थ तत्व नहीं, क्रिया तो फिर भी है, सूक्ष्म है। वो क्रिया मिटने से कर्ण मिट जाता है, कर्तृत्व मिट जाता है, सब मिट जाता है। तो कर्तृत्व के मिटाने का जोर जितना गीता ने दिया है, इतना और ग्रंथ हमें आता नहीं है। शंकरानंद जी भी ये कहते थे गीता ने कर्तृत्व निषेध का बहुत ज्यादा निषेध किया है, इतना और जगह नहीं आता, उनकी पुस्तक बहुत पढ़ी हुई है, वो कहते थे बात। तो ऐसी एक सूक्ष्म बात है,
ये ब्रह्मभूत वाली बात है ना।
हाँ,
तो ये ब्रह्मभूत तो गीता की बात है।
हाँ,
उसमें उस ब्रह्मभूत में तो कोई अहंकार की बात है नहीं,
ब्रह्म स्वरूप रहा ना,
अहंकार की बात
नहीं। अहंकार अहम शब्द नहीं है, इस बात से मैंने सूक्ष्म बताया कि अहंकार ब्रह्मभूत कैसे बना। ब्रह्मभूत तो जीव की अवस्था बताई गीता ने, महिवांशो जीव लोगे जीव भूता सनातन, अरे यही बताई अपरायम इतस्तुन्याम प्रकृति वृद्धि में पराम जीव भूता महाभाव। तो जीव भूत है, ये ब्रह्म भूत है। जीव भूत में कुछ अहंकार की तरफ दृष्टि है, ब्रह्म भूत में ब्रह्म की तरफ दृष्टि है, इतना फर्क है। परंतु है ब्रह्म भूत, भूत का मतलब बना हुआ,
ब्रह्म जब तक बना हुआ है तब तक अहंकार का निशान से है।
हाँ जी, ये बात है, फिर ब्रह्म भूत नहीं रहता है। ब्रह्मभूत पराभक्ति, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषित न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, पराभक्ति प्राप्त होती ब्रह्मभूत की बात। भक्ति से मेरे को मैं यावान ये तत्व से जानना था, वो जानने के बाद में विषय है, ये पूर्ण अवस्था है।
ये जो मैं ब्रह्म हूँ वो और ये जो ब्रह्म भूत हुआ दोनों अलग अलग
है? अलग नहीं, सूक्ष्मता से ब्रह्म भूत पहले आम ब्रह्मास्मि तो साधन अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, अहम नहीं रहेगा, ब्रह्मास्मि ऐसा रहेगा। तो ब्रह्मास्मि में सूक्ष्म अहम है, तभी तो अस्मि है, तो उसमें भी सूक्ष्म अहमता भी मिट जाए तब वो अस्मि।
गीता ने फिर ब्रह्म भूत के बाद संतोष नहीं करवाया?
ना, संतोष नहीं है।
मद भक्ति में लगते
पराम, और भक्तिया माम अभी जाना थी, अब जानता है वो यावान यशास्मि जो सत्व था। तो यावान यशास्मि ये बड़ी मुश्किल होती महाराज, यहाँ यावान यश तो है, ये सगुण में हो सकता है, निर्गुण में यावान यह क्या होगा, यावान तवान तो नहीं होता ना।
कोई अमूर्त में कैसे
होगा, यावान तवान कैसे होगा। तो यावान यश में तत्व था, ये तत्वता यावान में तत्वता वहाँ तत्व में जाकर के ये चीज नहीं है। तो तुम हम तत्व तो ज्ञात हुआ फिर विशेष धारण करो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। ऐसी विलक्षण बात। नारायण 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 इसमें विचार करो फिर जो हो तू छो।